भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर मन बेहद हर्षाता है आनंद मगन आत्म पंछी आनंद मगन आत्म पंछी अंबर में कहीं खो जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर अब तक न पढ़ा न लिखा गया है किताबों में। भगवान पढ़ाएंगे सम्मुख सोचा न देखा ख्वाबों में। प्रभु मिलन का ये प्यारा अनुभव शब्दों में कहा नहीं जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर
शांति। हमारे बीच में पधारे हैं आदरणीय राजयोगी भ्राता सुशील भाई जी। एक हाथ हिलाकर भ्राता जी का स्वागत सत्कार अभिनंदन। ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनने वाले हमारे सुशील भाई देवभूमि हिमाचल प्रदेश से निकले हैं। 1995 में आपने यह ज्ञान प्राप्त किया और 1999 में मधुबन में समर्पित हुए। यहाँ आने से पहले 14 वर्षों तक सोनी कंपनी में अमृतसर पंजाब में इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन के रूप में अपनी लौकिक सर्विस कर रहे थे। बाबा का ज्ञान मिला, समर्पित होने का ख्याल आया तो सब छोड़कर 99 में यहाँ आ गए। और यहाँ पर विशेष करके जो मीडिया पब्लिक रिलेशन और जो सोशल विंग की सेवाएं हैं वो मुख्य रूप से देखते हैं। और इसके साथ साथ मधुबन में जो पुरुषार्थी ग्रुप की एक्टिविटीज होती हैं उसके आप सक्रिय सदस्य हैं। और रात्रि क्लास वैसे तो हमारे छोटे लाल भाई अरेंज करते हैं, उनकी अनुपस्थिति में आप अरेंज करते हैं। तो बहुत ही ज्ञान में गहरी रुचि है। आज हमारे बीच में मार्गदर्शन देंगे कि ब्राह्मणों का धर्म और कर्म क्या होता है। आदरणीय भ्राता जी,
ओम शांति। सारे कल्प में ब्राह्मण छोटी हैं, ऊंचे ते ऊंचे हैं, इसलिए धर्म कर्म भी ऊंचे ते ऊंचे ही होंगे। ब्राह्मण जीवन केवल हमको सारे कल्प में थोड़े समय के लिए ही मिलता है, और इस ब्राह्मण जीवन का जो सुख है, जिसका अतीन्द्रिय सुख का गायन है, उसकी महसूसता, उसकी अनुभूति केवल हम अभी ही करते हैं। तो अब हम सभी इस बेहद के मधुवन में बाबा की गोद में बैठे हैं, और इस मधुवन की महिमा संडे की अव्यक्त वाणी के पहला पैराग्राफ में भी हम सबने सुनी कि ये मधुवन साकार सृष्टि का स्वीट होम है। ये साकार में मिलने का स्थान है, जहां नदियों और सागर का मिलन होता है, रूहानी मेला होता है, और अव्यक्त की भी अनुभूति की जा सकती है। तो इस मधुवन के हर कोने में, हर जर्रे जर्रे में, हर दीवार में ऐसे वाइब्रेशन, पवित्र वाइब्रेशन, शक्तिशाली वाइब्रेशन भरे हुए हैं, जिनको टच करने के लिए, महसूस करने के लिए उतना ही हमको गहराई से चिंतन, अटेंशन देने की आवश्यकता है। क्योंकि ये छोटा सा संगम युग है जिसमें हमको बहुत बड़ी प्राप्तियां करनी हैं, और बाबा रोज हमारे सामने प्राप्तियों की खान खोल कर रख देते हैं। डिपेंड करता है कि हमारी झोली कितना उसको ग्रहण कर पाती है। अथाह खजानों का भंडार हमारे सामने रोज बाबा रखते हैं, लेकिन उस भंडार का हम कितना फायदा उठाते हैं वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। जैसे स्कूल में टीचर निष्पक्ष रूप से हर एक को पढ़ाता है, कोई भेदभाव नहीं होता है, लेकिन उसी स्कूल में कोई बच्चा फर्स्ट डिवीजन में चला जाता है, कोई सेकंड, कोई थर्ड, कोई पास, कोई फेल भी हो जाता है, टीचर तो पक्षपात नहीं करता है। तो बाबा तो बेहद का टीचर है, हमें इतने बेहद के ज्ञान रत्न से श्रृंगारते रहते हैं, इतनी इतनी ऊंची शिक्षाएं देते हैं, जिससे ना केवल हमारा वर्तमान उज्जवल बनता है बल्कि भविष्य भी उज्जवल बनता है। कल का स्लोगन था ना, क्या स्लोगन था, उज्जवल की बात थी ना उसमें, क्या स्लोगन था, आज का नहीं कल का, जो भोजन कल खाया उसका बताओ। कहते हैं अचार जितना पुराना होता उतना अच्छा होता है ना। हाँ जी, बिघ्नों से घबराओ मत, वो परसों का ने, मन को उलझनों में उलझाओ मत, वर्तमान और भविष्य को उज्जवल बनाओ, परसों का था ना। तुमको जो वर्तमान का ज्ञान है वो तो हमको बुद्धि में रखना है, लेकिन जो पुराना हम सुनते हैं ना उसको भी बार बार रिकॉल करना, रिवाइज करना उसको, नहीं तो भूल ही जाता सारा। और जितना हम पुरानी स्मृतियों को, पुरानी मूल्यों को रिवाइज करते रहेंगे उतना मन शक्तिशाली बनता है। क्योंकि हम एक ही बात को, मान लीजिए हम एक महीने के स्लोगन हैं, अगर केवल आज का स्लोगन बार बार रिवाइज करते हैं उतनी शक्ति महसूसता नहीं होगी, लेकिन जितना हम अपने मन पर उसको होमवर्क देंगे कि एक महीने के सारे स्लोगन याद करने की प्रैक्टिस करेंगे तो मन बहुत शक्तिशाली बन जाएगा। क्योंकि एक महीने के 30 बार हम रिवाइज करेंगे तो मन 30 गुना शक्तिशाली बन जाएगा। तो खाली योग से शक्ति नहीं मिलती है, ज्ञान से भी बहुत शक्ति मिलती है। और योग का आधार भी क्या है, ज्ञान है, बिना ज्ञान के योग असंभव है, इसलिए हमें अपने ज्ञान को भी बढ़ाना है। ज्ञान बुद्धि में है तो योग लगाने की जरूरत नहीं है, योग स्वतः लग जाता है। अगर योग में हमारा मन बुद्धि बढ़ता है उसका एक ही कारण है, अज्ञान, अर्थात पुरानी स्मृतियां, पुराने संस्कार, कुछ ना कुछ तो हमारा मन सोचता ही रहता है। ऐसा नहीं योग में हम शून्य अवस्था में बैठ जाते हैं, या तो लौकिक की बातें याद आएंगी, या इस ब्राह्मण जीवन में जहां हमने गलतियां की हैं वो गिल्ट कॉन्शियस याद आएगा, या जहां हम बैठे हैं उस संगठन में हम एक दो की विशेषताओं को देखने के बजाय अवगुणों का चिंतन करेंगे। मन तो ध्यान तो कहीं ना कहीं योग तो हमारा लगा ही रहता है, निरंतर योगी तो हम हैं ही हैं, लेकिन कहाँ लगा रहता है ये हमको अपनी जांच करनी है। वो अपने दिल रूपी दर्पण में देखना है कि हमारी स्मृतियां किस तरफ जाती हैं। योग तो निरंतर लगा ही हुआ है। तो आज की मुरली हम पर देखेंगे ब्राह्मणों का धर्म कर्म क्या है। धर्म अर्थात धारणाएं और कर्म अर्थात जो हम कर्म करते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं आज की मुरली में, देखेंगे कुछ एक बातें। बाबा ने कहा तुम्हारी अवस्था कौन सी है अभी, बानप्रस्थ अवस्था, सबकी बानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए क्या करना है। हाँ जी, वाणी से परे जाना है, और क्या करना है। बानप्रस्थ अवस्था है क्यों, क्योंकि वापस घर जाने का टाइम है, इसलिए सारे खाते खलास करने हैं, और क्या बनना है, पावन बनना है। तीन काम बता दिए इसमें। तो बानप्रस्थ अवस्था में हम देखते हैं संसार में जो व्यक्ति बानप्रस्थ अवस्था में चले जाते हैं तो स्वतः उनका मन उपराम हो जाता है। घर में जैसे उनकी एक पूर्वज की स्थिति रहती है, ज्यादा वो टेंशन में नहीं जाते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल लें, उनके पिताजी बानप्रस्थ अवस्था के लिए बाबा ने तैयारी की थी, तो जैसे घर को छोड़ दिया। तो ऐसे हम इस संसार में तो रहते हैं, लेकिन हमारा मन संसार की तरफ आसक्ति से जुटा ना रहे, आकर्षण ना हो, और वो तब होगा जब हमारा ध्यान बाबा के महावाक्यों के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। तो सारे दिन में हम कितना वाणी से परे रहते हैं। अब वाणी से परे का अर्थ ये नहीं कि हमको बोलना नहीं है, वो वाणी जो लौकिकता में लेकर जाती है उससे हमको परे रहना है, वो वाणी जो हमको विकारों की तरफ आकर्षित करे उससे हमको मुक्त रहना है। ऐसा नहीं है कि हमको बोलना नहीं है, बोलना तो है ही है, संबंध संपर्क में रहना है, घर में रहनी है, सारे पारिवारिक दायित्व, सामाजिक जिम्मेवारियां वो तो सब निभानी है, ऐसा तो नहीं हम मौन में बैठ जाएंगे। तो वो सब बातें करते हुए भी हमको हमारे मुख से वो वाणी नहीं निकालनी है जो हमारा पतन करे, जिससे हमारी स्थिति गिर जाए। हमें वो वाणी बोलनी है मुख से जो हमारा उत्थान करे, हमारी प्रगति हो, उन्नति हो, ना केवल हमारी बल्कि जो भी हमारे संबंध संपर्क में आते हैं उनके भी प्रगति हो। हमारे बोल मुख से ऐसा बोलना निकले कि किसी की स्थिति गिर जाए। तो बानप्रस्थ अवस्था अर्थात हम वाणी से परे उपराम वृत्ति पावन बनाने का हम कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं, और सारे खाते जो हैं उनको हम कितना खलास कर रहे हैं। बाबा कहते हैं जमा का खाता करने का समय अभी है, 63 जन्मों से खाते गवाए हैं। संडे की मुरली में था, 6 खाते बताए थे, कौन कौन से गवाए, 6 खजाने जो मुरली में बताए थे, खजाने तो बहुत हैं, श्वास, संकल्प, समय, गुण, शक्तियां और ज्ञान। तो सारे इतने खजाने मैंने गवा दिए, अब जमा भी करने हैं, तो देखना है हमारे पास कितने खजाने हैं। अपनी एक लिस्ट होनी चाहिए हमारे पास, ये मेरे पास हैं, ज्ञान हमारे पास है जितना होना चाहिए, वो गुण हमारे विकसित हो रहे हैं, उनमें वृद्धि हो रही है, वो शक्तियां हमारे अंदर हैं जो समय आने पर अपने आप काम करें, वो संभालने की शक्ति है। कहीं कोई बात हो जाती है उस बात को हम संभाल रहे हैं, या किसी ने हमको कुछ कह दिया तो उसको हम बढ़ा तो नहीं रहे हैं, फैला तो नहीं रहे हैं, उस बात को हम संभाल रहे हैं। क्या संभालने की शक्ति समय पर काम कर रही है, सहन शक्ति समय पर काम कर रही है। तो वो केवल बुद्धि के स्तर पर नहीं रखनी है, उसके लिए मेहनता से हमको उस पर चिंतन करना पड़ेगा, चिंतन करते करते योग करना पड़ेगा, तब वो हमारी शक्तियां अपनी होंगी। नहीं तो केवल बुद्धि तक सीमित रह जाएंगी, या तो किताब तक सीमित रह जाएंगी, नहीं तो वो स्लोगन दीवारों तक ही सीमित रह जाएंगे। वो हमारी रग रग में समा जाए, हमारी कर्मेंद्र में समा जाए, हर एक कर्मेंद्री जैसे ज्ञानेन्द्री बन जाए, ज्ञान को पूरा धारण कर ले। इसलिए बाबा हमको क्या कहते, स्वराज्य की सीट पर हमेशा सेट रहो, गलतियां हमारे से कब होती हैं? जब हम सीट से उतर जाते हैं। अगर सीट पर सेट रहेंगे हमेशा तो गलतियां होंगी नहीं, लेकिन सीट से उतरने की आदत हमको लंबे समय से पड़ी है, क्योंकि मन चंचल बच्चे की तरह है, उसका स्वभाव ही ऐसा है। अब बच्चे को संभालना कैसे होता है, मां को पता होता है उसको कौन से खिलौना देने हैं, तो वो संभल जाएगा। तो ऐसे ही हमें अपने मन का, मन भी तो एक बच्चे की तरह है, तो अपने मन को भी समझना है, उसकी पालना बच्चे की तरह करनी है। उसको हमको पता कि मन की क्या फितरत है, कि कहां कहां हमारा मन जा रहा है। हमें अपनी गलतियों को सुधारने का जो टेक्निक है वो वास्तव में हमारे पास ही होती है, लेकिन हम दूसरों से उसका पूछना चाहते हैं। करना तो हमको खुद ही है, हमको पता है कि बुरा नहीं देखना चाहिए, किसको नहीं पता होता, संसार वालों को भी पता होता है, लेकिन हम फिर भी देख लेते हैं, क्योंकि हमारा कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, सबसे ज्यादा धोखा देने वाली कर्मेंद्री कौन सी है? आंखें हैं। अब पता तो सबको ही है, ज्ञान भी सबको ही है, लेकिन काम किसको करना है? बाबा पूर्वाग्रह हाथ रख दे तो भी तो सुधर थोड़ा जाएंगे, हम सुधर जाएंगे? पूरी रात बैठ के बाबा से दृष्टि लेते सुधर जाएंगे? जो उसने कहा वो काम करना पड़ेगा, धरातल पर प्रैक्टिकल में करना पड़ेगा। तो जो भी हमारी कर्मेंद्रियां, ये तो हमारी सहयोगी हैं, मित्र हैं, इनके द्वारा जैसे हमने विकर्म किए अभी इनको ही अच्छे कर्म में लगाना है। इसलिए बाबा ने क्या कहा, विकर्मा जीत बनो, आज की मुरली में था ना, विकर्मा जीत बनना है। तो इन कर्मेंद्रियों को हमें पूरा सहयोगी बनाना है, इन आंखों के बारे में सोचना है कि कितनी सौभाग्यशाली ये आंखें हैं कि इन पर भगवान की दृष्टि पड़ी है, इन नजरों में भगवान की नजर समाई हुई है, ये पवित्र आंखें हैं, ये तन भी साधारण नहीं है। अभी जब से हमारे ऊपर भगवान की दृष्टि पड़ी है तो हमारा शूद्र जो जीवन है वो जैसे मृत्यु होगी, उसकी एक नया जन्म मिला हमको, ब्राह्मण जन्म मिला है, तो धारणाएं भी सारी चेंज होगी हमारी, हमारे संकल्प चेंज हो गए, हमारी दृष्टि चेंज हो गई, हमारी वृत्ति चेंज होगी, हमारी कृति चेंज होगी, हमारी व्यवहारिकता चेंज होगी, हमारा खान पान चेंज हो गया, संबंध संपर्क में हम किस तरीके से आते हैं वो चेंज हो गया, संसार के लोग कैसे आते हैं हम कैसे आते हैं, कितना फर्क पड़ गया। अगर हम थोड़ा सा ये भी चिंतन करें कि बाबा की दृष्टि हमारे पर पड़ी, हमारे जीवन में क्या क्या हो गया, तो भी बहुत सौभाग्य। तो बार बार हमको स्मृतियों को जल देना है, वो स्मृतियों को शक्तिशाली बनाना है। जितनी हमारी स्मृति शक्तिशाली होगी, हमारी स्थिति स्वतः शक्तिशाली होगी। केवल ऐसा नहीं कि योग के समय हम शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करें, निरंतरता चाहिए। पता नहीं कौन से समय में हमारा श्वास निकल जाएगा, ऐसा तो नहीं है कि जिसमें हमारी श्वास निकलेगी अंतिम श्वास तो हम योग में बैठे होंगे, वो तो कहीं भी जा सकती है। कल था ना मुरली में, अंतमति सो गति, तो कभी भी हो सकती है। तो हम अपने स्मृतियों को शक्तिशाली बनाना है। कौन कौन सी ऐसी बाबा ने हम सबको स्मृतियों से सुसज्जित किया है जो निरंतर हमको शक्तिशाली बना सकती है? तो काम हमको खुद के स्तर पर करना है। तो पहली बात हमने देखी कि वानप्रस्थ अवस्था में अगर हम हैं तो क्या हमारी अवस्था सारे दिन में वैसी रहती है? उसी अनुकूल हम कर्म करें, वो सारे खाते पूरा कर रहे हैं, वो पावन बनने की तरफ हमारा ध्यान है, घर जाने की वापसी के स्मृतियां वो रहती हैं, वो हमारी प्रैक्टिस होती रहती है। और दूसरी बात बाबा ने क्या बताया मुरली में, तुम्हें डैश बनना है डैश नहीं बनना है, प्रश्न उत्तर में था। ब्राह्मण अर्थात धैर्यवान, धीरज धरना है, इस ज्ञान में बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत धैर्यता चाहिए। हम थोड़ा परिणाम ना जल्दी चाहते हैं कि आज योग करें ना, अब तो कोई विघ्न आना नहीं चाहिए, आज ही जैसे हम संपूर्ण बन जाएं। ये तो बाबा कहते हैं अंतिम समय तक विघ्न आएंगे, माया का तो मैं भेजूंगा, वो तो मेरी बेटी है। तो बहुत धैर्यता चाहिए इसमें, ऐसे थोड़े नहीं दादियां इतने सालों तक तपस्या करती रही हैं, विघ्न तो अंत तक भी आते रहे, भले शारीरिक रूप से व्याधियां भी आती रही, लेकिन दादियों के ऊपर उन विघ्नों का असर नहीं है, वो जैसे खेल लगे उनके लिए। तो बहुत धैर्यता चाहिए इसमें, ऐसा नहीं छोटी छोटी बातों में उतावले में आ जाए, बहुत धैर्यता से। हमने देखा दादियां कोई भी समस्या लेकर आते थे तो बड़े दादी जी कितना धैर्यता से सुनते थे, कोई जवाब नहीं, प्रतिक्रिया नहीं, आराम से धैर्यता से सुनते थे। सुनने की भी शक्ति चाहिए हमको, नहीं तो हम अपनी बात को थोपना चाहते हैं, दूसरों की बात को सुनना कम चाहते हैं, तो सुनने की भी शक्ति चाहिए। इसलिए बाबा कहते धैर्य का फल मीठा होता है। तो लंबे समय के पुरुषार्थ के बाद, लंबे समय की साधना के बाद कुछ अनुभूति होने लगती है, और उस अनुभूति पर हमको ठहर नहीं जाना है, अनुभूति के अनुभव को बढ़ाते जाना हमको। छोटा सा अनुभव हमको वहां ठहरना नहीं है, और आगे और आगे और आगे और आगे, क्योंकि अनुभव तो बहुत दूर की बात है। जिस अवस्था को हमको प्राप्त करना है उसके लिए यात्रा तो बहुत लंबी यात्रा है, उसमें बहुत सारी परिस्थितियां आएंगी, बहुत सारे विघ्न आएंगे। इसलिए बाबा ने क्या कहा, विघ्न तो आएंगे लेकिन अंत में सारे तुम्हारे आगे माथा टेकेंगे, झुक जाएंगे, बंधेलियों को मार खानी पड़ेगी, ये तो होता रहेगा, लेकिन हमको वहां रुक थोड़े नहीं जाना है। अगर हम अभी अपने जीवन का विश्लेषण करें तो हर एक ब्राह्मण ने अनेक विघ्नों का सामना किया है। अगर अभी हम इस स्टेज पर खड़े होकर देखें वो विघ्नों को, तो वह विघ्न थे ही नहीं वास्तव में, वो तो हमारे लिए खेल थे, लेकिन उसमें हमको कितनी बड़ी परिस्थितियां लगती थी, जब घर वाले सारे एकदम विरोधी हो गए, और अभी हम देखते तो वो तो जैसे वो परिस्थितियां हमको शक्तिशाली बनाने के लिए थी, तो वो अच्छी लगती हैं अभी। तो जीवन में परिस्थिति तो आएंगी आएंगी, लेकिन हमको उनसे पाठ पढ़ के आगे बढ़ना है। और हट्टी तो बाबा कहते हैं कि एक दिन सब झुकेंगे, सब यहां आके नमन करेंगे, चरणों में पड़ेंगे, तो विघ्न भी जैसे हमारे क्या है, मित्र हैं हमको, तो विघ्नों को विघ्न नहीं समझना है, वो तो हमको आगे बढ़ाने के लिए आते हैं। और संसार में किसको विघ्न नहीं आते हैं, संसार में अगर हम देखेंगे जो बड़े बड़े उद्योगपति हुए हैं उन्होंने सफलता अर्जित की ऐसे थोड़ी निकल ली है, या बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं कितने सारे आविष्कार किए ऐसे थोड़ी ना उनको सफलता मिल गई है। तो हम तो भविष्य क्या क्या बनने वाले हैं, प्रिंस प्रिंसेस, कल की मुरली में था ना राजकोट वाले क्या हैं, हाँ तो वहां तो प्रैक्टिकल में कॉलेज भी है, तो प्रिंस प्रिंसेस आए थोड़ा बन जाएंगे, हर तरह से चोट मिलेगी है ना। तो विघ्नों से हमको सीखना है। तो ब्राह्मण अर्थात वानप्रस्थ अवस्था वाले, पहली बात। दूसरी बात, ब्राह्मण अर्थात सदा धैर्यवान, बाबा धैर्यता का सागर है। इतने सालों से हमको बाबा ज्ञान सुना रहे हैं, रोज बाबा मीठे बच्चे कहते हैं, लेकिन कभी कभी हम अपने मन पर हाथ रख के देखते हैं तो मिठास तो थोड़ी सी भी नहीं दिखती है बीच में, फिर भी बाबा कहते हैं मुख को मृदु बनाओ, मीठा बनाओ, वो सारा नीम की तरह कड़वा ही पानी दिखता सारा अंदर में, लेकिन धीरे धीरे देव कड़वापन निकल जाएगा। उस कड़वेपन को भी हमको साक्षी होकर देखना है, अपनी बुराइयों को भी हमको पकड़ के नहीं बैठना है, उनको भी साक्षी होकर छोड़ देना है। तो ब्राह्मण अर्थात सदा धैर्यवान। नेक्स्ट, ब्राह्मण अर्थात होशियार व्यापारी। बाबा ने कहा ना, तुम बच्चे कौन हो, होशियार व्यापारी, अच्छे सेल्समैन हो, परसों की मुरली में था सेल्समैन। और संसार में सबसे अच्छा सेल्समैन किसको माना जाता है, ज्यादा माल बेचता है। और एक कहावत है उसके बारे में, किसको आती है, संसार में सबसे अच्छा सेल्समैन किसको माना जाता है, हाँ कहते हैं जो गंजे को कंघी बेच दे, वो भाई जी ने बताया जो गंजे को कंघी बेच दे वो है होशियार सेल्समैन। तो बाबा भी कितना होशियार सेल्समैन है, बाबा कहते हैं तुम्हारा तो टिप्पणी घिस गया था, एक बाल बचा था चोटी का पकड़ के उठाया मैंने। तो होशियार व्यापारी बनना है हमको, ज्ञान रत्नों का व्यापार करना है, अपने आप से व्यापार करना है कि सारे दिन में हमने अपने मन बुद्धि में कितने ज्ञान रत्न भरे हैं। होशियार व्यापारी क्या करता है, पत्थर को भी बेच देता है वो अच्छी तरह से, मिट्टी होगी ना उसको भी बेच देगा अच्छी तरह से, वो तो धूल से भी अगर थोड़ा सा भी नजर आ गया हो तो कौड़ी को हीरा समझ के बेच देगा वो, और होता भी ऐसे। और कई तो माते झांसे भी आ जाती हैं, क्या होता है ठग क्या करते हैं, बोले दो गुना करके देंगे और अगले दिन दिखता ही नहीं है वो। और बाबा तो क्या कहते हैं, मैं तुमको पद्म गुणा करके देता हूं लेकिन यहां तो दिखता नहीं है, बाबा तो क्या के चला जाता है लेकिन दिखता वो है प्रैक्टिकल में, लाइफ में वो खुशी रहेगी, वो संतुष्टता रहेगी, आत्म संतोष। जब हम कंपैरिजन करेंगे इस ब्राह्मण जीवन का और वो शूद्र जीवन का, तो हमारे जीवन में कितना महान परिवर्तन आ गया, क्या से क्या बना दिया। ये जो ज्ञान रत्न हमारी बुद्धि में ठहरे हैं, ये थे जो गीत में सुना कि ज्ञान हमको कैसा ज्ञान दे दिया, कभी सपने में नहीं सोचा था, इस ज्ञान से क्या बन गया हम, सभी के जीवन में अनुभव होगा, कैसे कैसे विचारों के हम थे, कैसे कैसे ख्याल चलते थे, कैसे कैसे हमारे मुख से वाणी निकलती थी, कैसी हमारी आदतें थी, घर में तूफान मचा देते थे, और अभी कैसे बन गई? जैसे घर में कहते जैसे देवता ही है अभी, कहां आसुरी हमारा स्वभाव संस्कार हो गया था और कहां अभी ईश्वरीय स्वभाव संस्कार हो गया था। संडे के मुरली में इतना तुम ईश्वरीय संस्कारों को यूज करो, अगर यूज नहीं करेंगे तो लूज हो जाएंगे। तो देखना कौन कौन से ईश्वरीय संस्कार हमको बाबा ने दिए हैं, कितना हमको यूज कर रहे हैं। तो ब्राह्मण अर्थात सदा होशियार व्यापारी, व्यापार करना है, थोड़ा बहुत नहीं बेहद का व्यापार करना है, ज्ञान रत्नों से हमेशा खेलते रहना है। नेक्स्ट है ब्राह्मण अर्थात झोली को भरपूर रखने वाले, भोलानाथ भंडारी आया है क्या करने, सबकी झोली भरने के लिए। तो इस झोली में हमने क्या क्या भरा हुआ है, क्योंकि सारा खेल यहीं से चलता है, हमने जो भरा है उसी अनुसार हमारी आंखें देखती हैं, उसी अनुसार हमारे मुख से वाणी निकलती है, उसी अनुसार हमारी बुद्धि चलती है, मन भी वैसे काम करता है। तो हमने इस झोली में क्या भरा है, अगर अच्छे अच्छे ज्ञान रत्न भरे हैं तो खुशबू आएगी, दूसरों को सुख देंगे, और अगर हमने क्या भरा है ऐसी वैसी बातें भरी हैं तो क्या होगा पैदा, मक्खी मच्छर बीमारियां पैदा होंगी, और वो किसको काटेंगे, सबसे पहले खुद को काटेंगे, मन बुद्धि भटकता रहेगा। तो देखना है इस झोली में हमने क्या क्या भर के रखा हुआ है। बाबा कहते हैं बुद्धि रूपी बर्तन को कैसा बनाओ, सोने का बर्तन बनाओ। तो हमने कौन इस बुद्धि को बर्तन को क्या बनाया हुआ है, लोहे का तो नहीं, अभी भी इसके अंदर मक्खी मच्छर तो नहीं बैठे हुए, झरमोई झंगोई की बातें तो नहीं है, इधर उधर बातों का चिंतन तो नहीं करते रहते हैं, संसार की बातें तो नहीं बुद्धि में भर के रखी है। तो ब्राह्मण अर्थात सदा बुद्धि रूपी बर्तन को ज्ञान रत्नों से भरने वाले, झोली को सदा भरपूर रखने वाले। नेक्स्ट ब्राह्मण अर्थात ज्ञान यज्ञ के रुद्र, ज्ञान यज्ञ के रक्षक था ना आज की मुरली में, इतना बड़ा बाबा ने यज्ञ रचा है तो इस यज्ञ के हम रक्षक हैं, है ना। तो रक्षक देखना है इस यज्ञ की रक्षा कैसे करेंगे, एक तो ये हमारा जीवन ही यज्ञ है वास्तव में, ये साधारण जीवन नहीं है। इस यज्ञ की हम रक्षा कैसे कर रहे हैं, जो भी हमारे संकल्प हैं, जो भी हमको बाबा ने खजाने दिए हैं, एक है सूक्ष्म एक है स्थूल, स्थूल में जो भी व्यवस्थाएं हमको दिखाई देती हैं आंखों से उनके हम कितना उनको बचाते हैं, और इसमें हमको दूसरों को नहीं देखना है, नहीं तो हमारी मेंटेलिटी धीरे धीरे धीरे, बाबा कहते ना परसों की संडे की मुरली में था, धीरे धीरे नए क्या हो जाते हैं, जैसे जैसे पुराने होते हैं तो पुरानी बातें पुरानों को देखने चालू कर देते हैं। तो हमको स्थूल में भी देख, क्योंकि हमको खुद की कमाई करनी है, जितना हम खुद अपने आप को परिवर्तन करेंगे अपने आप को सुधारेंगे दूसरे अपने आप ही देख के सुधरते रहेंगे, हमें दूसरों को सुधारने की जरूरत नहीं है, दूसरों को सुधारने का ठेका बाबा ने लिया हुआ है, हमको वो काम नहीं करना है, हमको अपने आप पर काम करना है। लेकिन होता क्या है, हम सारे दिन में उंगली हमारी दूसरों की तरफ और जो चार उंगलियां हमारी तरफ है उधर ध्यान कम रहता है, सारी कमी कमजोरियां अगर देखते रहेंगे, सारी कमी कमजोरियों का अड्डा जैसे हमने अपने मन में बना दिया है, जैसे हमने वो ठेका ले लिया दूसरों की कमी कमजोरियों को देखने का। तो इस झोली को भर के रखना है, इस यज्ञ के रक्षक बनकर रहना है, चाहे कहें हम बिजली पानी ट्रांसपोर्टेशन, चाहे हम सेंटर में रहते हैं या घर में भी रहते हैं, वो भी घर अब साधारण नहीं है, भले बाकी ज्ञान में नहीं चलते हैं, एक ही वहां एक ही आत्मा चलती है ज्ञान में, एक ही भाई एक ही बहन एक ही माता चलती है, वो भी एक यज्ञ की तरह है, क्योंकि उनको हम सिखा रहे हैं। भले हम कहीं बाजार में जा रहे हैं, कहीं नल खुला है उसको भी बंद कर रहे हैं, तो वो भी उसके उस कर्म से भी हम सिखा रहे हैं दूसरों को। संसार में भी ऐसे कितने लोग होते हैं, छोटे छोटे क्लिप कैसे आते रहते हैं, कितनी सीखने वाली बातें होती हैं। तो हमको हर बात में सीखना है, हम इस सृष्टि के विश्व के रक्षक हैं, तो केवल छोटे से संसार के नहीं है, ये पूरा विश्व ही हमारा है। बाबा हमको राजाई किसकी देने आया, विश्व की राजाई देने के लिए आया हुआ है। तो हमको स्थूल और सूक्ष्म दोनों तरीके से रक्षक बनना है। और नेक्स्ट ब्राह्मण अर्थात सदा आहुतियां डालने वाले, ना केवल स्वयं की बल्कि दूसरों की। तो कौन कौन सी आहुतियां हमको डालनी है, कौन सी आहुति डालेंगे, क्योंकि टू वे डिस्कशन रहेगा ना तो अच्छा लगता है, नहीं तो एक तरफ से सुनते रहेंगे वो तो संसार की तरह जो महात्मा जी प्रवचन करके चले जाते हैं वैसे वाली बात हो जाती है। ये तुम्हारा परिवार है, हाँ जी, बेहर संस्कारों की और बेकारों की आहुतियां, और तो बहुत सारी आहुतियां डालनी है। सबसे पहले आलस्य अलविलापन है ना, एक है सुस्ती जो हमको नींद आती है। हाँ, सोना भी चाहिए, कभी उसके कई कारण हो सकते हैं, कभी कोई दवाई खाता है, कोई बीमारी है, वो अलग बात है। अलवेलापन अर्थात हम किसी कार्य को इग्नोर ना करें, जो काम हमको आज करना वो आज ही कर देना है। मुरली आज की मिली, अब वो आज ही हमारे हाथ में है, कल तो दूसरी आ जाएगी। जिस पर हमको हमने संकल्प कर लिया कि आज इसकी इस मुरली पर हमको चिंतन करना है, तो आज ही करना है उसको। आज की मुरली से हमको 10 पॉइंट याद रखने, तो आज ही रखने हैं, वो कल नहीं, वो आज ही करना। उसको अलग अलग टालते नहीं जाना है कि हमको चिंतन करने का टाइम आया और हमको कोई दोस्त मिल गया और पकड़ के ले गया, चलो थोड़ा घूम के आते हैं और बह गए उसी में, चलो थोड़ा इधर उधर टहल के आते हैं, चलो थोड़ा खाने पीने की चीज बना के आते हैं, बाजार घूम के आते हैं, तो वो हमारे जैसे माया। आज बाबा ने क्या बोला, माया कैसे आएगी, माया के बहुत रंग हैं वो, और राय रूप से आएगी। जिस रूप से माया ने माया को हमने परख लिया, वो उस रूप से नहीं आएगी अभी, वो नए रूप से आएगी, अभी नए रूप से आएगी। तो अलग से अवेलेपन की आहुति डालनी है। दूसरा बहानेबाजी, बहाने तो हम बहुत करते हैं ना, सेंटर में जाने के लिए घर में कोई काम आ गया, दीदी को हम बहाना बता देंगे कि कोई सेवा आ गई तो हम बता देंगे दीदी हम आज नहीं आ सकता, भले घर में हम सोए पड़े हैं, जैसे हम अपने भाग्य को ठोकर मार रहे हैं। हमने देखा कभी भी सेवा में मना नहीं करना है, हाँ करेंगे ना तो जैसे हमारे में एनर्जी बच जाती है, ना करने से नेगेटिव एनर्जी पैदा हो जाती है और वो हमारे संस्कार बन जाते हैं। हाँ करेंगे तो हमारे बंधन खलास हो जाते हैं अपने आप। हमने खुद ही अपनी लाइफ में देखा है, जब हम नए नए ज्ञान में आए, पहला ही दिन था, अभी पूरी तरह कोर्स भी नहीं किया था, और रंगीन कपड़ों में हम सेंटर में गए थे, तो हमको बहन जी ने कहा क्लास की चादरें धुलाई करेंगे, अभी ज्ञान की समझ ही नहीं हमको बिल्कुल भी, तो हमने बोला हाँ करेंगे। तो हमने देखा धीरे 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 हमारे बहुत सारे बंधन खलास हो गए अपने आप ही। हम सर्विस करने जाते थे सवेरे 9 बजे और पहले दिन में हमको 10 बजे आ दिए उधर ही। अब दोनों मन तो बड़ा पसोपेश में था, उधर बहन जी माना सेवा, और सेवा को तो प्राथमिकता संसार में कितना देते हैं, अब सेवा के लिए मना करें, या उधर हमारा ड्यूटी का टाइम भी हो रहा है तो उधर भी हमको डांट पड़ेगी। तो लेकिन देखा हमने पहले दिन में हमको डांट नहीं पड़ी, बल्कि हम सहज रूप से वहां चले गए। दूसरे दिन 10 की बजाय 10:30 बज गए, बहन जी ने सोचा ये तो ये टाइम दे रहा है तो और बढ़ा लिया टाइम, अब वो बहन जी भी फायदा लेने लगी। अच्छा चलो बहन जी का फायदा, लेकिन हम तो ये सोचा हमारा भाग्य बन रहा है, तो माना नियमित टीचर क्या है, वो तो बाबा कहते हैं बहने क्या है, गुरु भाई हैं वो, अब गुरु का आदेश आया तो क्या होगा। ब्रह्मा का देखा होगा आपने, अज्ञान काल में घर में शादी थी, फंक्शन था कोई बहुत बड़ा, लेकिन आदेश आया गुरु का तो फंक्शन छोड़ दिया, और क्या आदेश था गुरु का अज्ञान काल में, कि फलाना मेरा एक शिष्य 10,000 जुए में हार गया, आप 10,000 रुपया लेकर आओ। ये तो ज्ञान काल की बात है, तो गुरु का कितना महत्व था, और ये तो ज्ञान में है। तो अगले दिन में 10:30 हो गए, फिर अगले दिन में 11 हो गए, अब ये तो हद ही होती जा रही है। तो ऐसे करते करते हमने देखा हमारे सारे बंधन धीरे धीरे खलास हो गए, और देखा हमारी जो हमको वेतन मिलता था, पगार मिलता था, वो भी धीरे धीरे बढ़ती गई, क्योंकि हम जहां सेवा करते थे वहां सेवा भी ऐसे नहीं कि हम बाहर की नौकरी कर रहे हैं उसको टेम्परेरी नहीं, वहां भी पूरे मनोयोग से सेवा करनी है, वहां भी दिल जीतना सबका, जैसे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस की जैसे हमारे ऊपर ही दे देते थे वो। तो ऐसा नहीं कि हम कोई ज्ञान में चल रहा तो उसके हम कोई ऐसे हीन दृष्टि से देखें, नहीं, वो भी भगवान के बच्चे हैं, पता नहीं वो कौन से समय में ऐसे ज्ञान में आएंगे और हमारे से भी आगे निकल जाएंगे वो। अब कई कई बार तो होता ही है ना, कोई ज्ञान में पति चलता नहीं है, पत्नी चलती है, और रोज योग तो लगाती रहती है, एक दिन पति आता है ज्ञान में और बहुत आगे चला जाता है, और फिर पत्नी ज्ञान में नहीं चलती है, उल्टा काम हो जाता है, ऐसा भी होता कि नहीं होता है। तो ज्ञान में संस्कार तो पति में पहले भी थे, लेकिन हमारा दृष्टिकोण क्या संकुचित हो जाता है, इसलिए बेहद का दृष्टिकोण, पूरा संसार अपना है, कोई ज्ञान में है या नहीं है, क्योंकि हमको द्वैंक मानी है, चाहे छोटा बच्चा है, चाहे बूढ़ा है, चाहे ज्ञान में है नहीं है, कोई भी है, हमको दुआएं अर्जित करनी है, दुआओं का खजाना, और जहां दुआएं हैं वहां हमारे विघ्न अपने आप ही खलास होते जाते हैं। तो कौन सी आहुति डालनी है, दूसरे नंबर की कौन सी बताई थी, पहले तो अलसेल वेला, पर दूसरा बहानेबाजी नहीं करनी है हमेशा, हाँ सेवा में तो एकदम जी जान लगा देना चाहिए, क्योंकि सेवाओं में हमको बहुत दुआएं मिलती हैं, हमारे बंधन काट देते हैं, और जिसकी भी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ती है तो हमारे प्रति उनका पॉजिटिव दृष्टिकोण हो जाता है और बहुत एनर्जी आ जाती है, और जो हमारी योग्यताएं विशेषताएं हमारे में नहीं होती हैं वो अपने आप ही आने लगती हैं, क्योंकि बाबा की दृष्टि ऊपर पड़ती है कि हाँ किया है। किसकी खातर? भगवान की खातर, उसकी आज्ञाओं का पालन किया है। इसलिए बाबा ने आज कहा ना, फरमान पर चलने वाले, श्रीमत पर चलने वाले हैं उनको क्या कहा जाता है, जो श्रीमत पर नहीं चलते उनको क्या कहा जाता है, आज की मुरली में था, नास्तिक। तो हमको बहानेबाजी नहीं करनी है। तीसरा कौन सी होती, छोटी छोटी चिंताएं करते रहते हैं, क्या होगा, जो होगा अच्छा ही होगा, वो चिंता भी होती कर देनी है उसको। बाबा ने इतना बड़ा स्लोगन दिया, बच्चे चिंता मत करो मैं बैठा हूं, उसके बाद ही हम चिंता क्यों करते हैं। हाँ, ऐसा नहीं घर की चिंता करनी नहीं, घर में बैठ जाए सो जाए तो चिंता करने वाला बैठा हुआ है, ऐसा भी नहीं। वो तो हमको पूरे मनोयोग से अपने दायित्व निभाने हैं, तो हमको ऐसी नहीं कि छोटी छोटी चिंताएं पकड़ के रखनी है, उसका क्या होगा उसका क्या होगा। जीना वास्तव में वर्तमान में, प्रेजेंट हमारे हाथ में, फ्यूचर हमारे हाथ में नहीं है। प्रेजेंट जो हम बीज बो रहे हैं अपने आप फ्यूचर सजेस्ट होगा, और पास्ट तो हमारे हाथ से निकल चुका है, या तो पास्ट के बारे में हम चिंता करते रहते हैं, इसने ऐसा क्या किया, ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, उसी को पकड़ के बैठे हुए हैं। बीती बातें जैसे भूत के समान है, तो भूत को पकड़ के रखा तो क्या, भूत तो तूफान मचाएगा ना, तो जो बीत गया सो बीत गया, उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। भले हम ब्राह्मण काल में हमारे से जितने भी विकर्म हुए उनके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है, छोड़ दो उसको, क्योंकि उसको कुछ कर नहीं सकते हम, ना ही उसको बाबा कुछ कर सकते हैं। बाबा ने उसका हमको मेथड दिया है, फुल स्टॉप लगा दो, बिंदी, आज की मुरली में सब बातें छोड़ के बिंदी लगा दो, जीरो बन जाओ, था ना आज की मुरली में, साइलेंस में चले जाओ, सूक्ष्म में भी बोलने की जरूरत नहीं है, बाबा से सूक्ष्म में बोलने की, बाबा हमको शक्ति दो, नहीं उस स्टेज पर बैठ जाओ, उसके समान बैठ जाओ, उस स्टेज पर स्थित बैठ जाएंगे तो हमारी इक्वल स्थिति हो जाएगी। नहीं तो क्या, हमारे अंदर में गिल्ट कॉन्शियस पैदा होती रहती है, पिछली बातों को पकड़ के बैठे हैं, तो सारे अपनी हीन भावनाओं की आहुति दे देनी है, वो चिंताएं टेंशन सारी उसकी हैं। जब भगवान का हमने हाथ पकड़ लिया तो चिंता किसकी बात की, किस बात की, देखने वाला देखेगा, सारी जिम्मेवारी उसकी है, और देदारी तो है नहीं, हजार बुझाओं वाला बाप है, वो हमारी जिम्मेवारी ले रहा है, तो हम दो बुझाओं वाला का हाथ क्यों पकड़ने है ना, एक अव्यक्त वाणी में है कि हजार बुझाओं वाला बाप आपका साथी है, तो दो बुझाओं वाले का आप हाथ क्यों पकड़ते हो, कारण बताओ। लेकिन हमको आदत पड़ी है, तो हमको अपना विशाल दृष्टिकोण, विशाल एटीट्यूड, विशाल बुद्धि को विशाल बनाना है। विशाल कब बनेंगे, जब चिंतन करेंगे, ज्ञान रत्न से खेलेंगे। तो कौन सी आहुति डाल देनी है, चिंता की, डर की आहुति डाल देनी है। इस ब्राह्मण जीवन में डरना नहीं है, नहीं तो अज्ञात सा डर बना रहता है, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, और होता कुछ भी नहीं है, सब अच्छा ही होता है। अगर हम जांच करें, जितना भी हमने सोचा था ऐसी वैसी बातें, और हमारे साथ वो बातें तो हुई नहीं है, सब अच्छा ही हो रहा है, और फिर भी सोचते जा रहे हैं। नहीं तो कई बार क्या होता है, मां बच्चे को स्कूल में भेजती है, और फिर जब स्कूल में छुट्टी का टाइम आता तो उसका इंतजार करती है, अब बच्चा आएगा आएगा आएगा, और बच्चा पहुंचता नहीं है, फिर टेंशन रहती धीरे धीरे, फिर एक मैसेज मिलता है कि एक एक्सीडेंट हो गया किसी बच्चे का, तो मां का हाल बेहाल हो जाता है ना, रो रो के हाल बेहाल हो जाता है कि मेरा बच्चा आया नहीं, शायद वही ना हो, वही ना हो, और जाके देखती है तो उसका बच्चा नहीं, तो दूसरा बच्चा होता है, तो क्या होता है, हाँ मेरा बच्चा नहीं है, तो देखो दूसरों के प्रति मन में क्या भर के रखा हो आपने, कितनी अटैचमेंट है, कितने उसमें खुशी मिलती है, मेरा बच्चा नहीं है उसका बच्चा है, तो हमारे मन में शुभ भावना कहां से हुई। फिर बाबा ने कहा तुम जगत माताएं हो, है ना, इस सारे संसार के पूर्वज हो, तो इस पूरा संसार ही हमारा अपना है, चाहे बाबा के बच्चे बने या चाहे नहीं बने कोई भी, सब अपने हैं, तो सबके प्रति शुभ भावना कामना रहेगी, और उससे पहले हमें अपने प्रति शुभ भावना कामना रखनी है, और ये ब्राह्मणों का धर्म कर्म यही है, सबके प्रति शुभ भावना कामना, और वो तब रहेगी जब अपने प्रति शुभ भावना कामना, अर्थात हम अपना जरा भी टाइम वेस्ट ना करें, हम अपने मन में ऐसे विचारों को स्थान ही ना दें जो हमारी स्थिति को गिरा दे, इसको कहेंगे स्वयं के प्रति शुभ भावना कामना। हमारे बुक से ऐसे बोल ही ना निकल जाए कि जो दूसरों को गिरा दे या हमारी स्थिति को गिरा दे, बाद में सोचते रहे ये तो हमारे मुख से निकलना नहीं चाहिए था, तो हमारी अपने प्रति शुभ भावना कामना सबसे ज्यादा अहम तो हमको अपने ऊपर करना है। सबसे ज्यादा शुभ भावना कामना तो हमको अपने ऊपर रखनी है। जितना हम अपने ऊपर रहम करेंगे, अपने ऊपर शुभ भावना कामना रखेंगे, तो दूसरों के प्रति वैसे अगर हमारे अंदर ही नहीं है तो दूसरों के प्रति क्या करेंगे। तो स्वयं को भी शुभ भावनाओं से भरपूर करके रखना है। तो जो भी हमारे अंदर कमी कमजोरियां सारी आहुतियां डाल देनी है, डर की, चिंता की, गिल्ट कॉन्शियस की, बॉडी कॉन्शियस की, सारी आहुतियां डाल देनी है। तो ब्राह्मण अर्थात पहली बात कौन सी सुनी, वानप्रस्थी। दूसरी बात ब्राह्मण अर्थात धैर्यवान। तीसरी ब्राह्मण अर्थात, हाँ जी हाँ, ब्राह्मण अर्थात जो गंजे को कंघी बेच दे, इसको ऐसे याद रखने का है। और ब्राह्मण अर्थात चौथी बात कौन सी बताई, हाँ जी हाँ, झोली को भरपूर रखने, बुद्धि रूपी झोली को ज्ञान रत्न से भरपूर रखने वाले। फिर ब्राह्मण अर्थात बहुत सारा कथा सुना दिया, हाँ जी, यज्ञ रक्षक। ब्राह्मण अर्थात आहुतियां देने वाले। ब्राह्मण अर्थात, अभी आप सुनो बहुत सारी बातें अभी और पड़ी हुई है, हाँ जी हाँ, हर कर्मेंद्रियों को ज्ञानेंद्र में परिवर्तन करने वाले, आज की मुरली के अनुसार हो सुनाओ, बहुत सारी बातें अभी पड़ी हुई है। क्योंकि मुरली के प्रति हमारी प्रीत कम है, हम अपने जीवन में देखते हैं, क्लासों में हम सुनेंगे अच्छी तरह से, लेकिन ये चार पेज की भगवान जो हमको सवेरे सवेरे क्लास करा के गया, जो अविनाशी खजाने हैं, अविनाशी बाप, अविनाशी श्रेष्ठ आत्मा है, अविनाशी भाग्य, कल की संडे की मुरली में था, उसके प्रति हमारी प्रीत कम है, इसलिए हमारे जीवन में परिवर्तन कम गति से हो रहा है। मुरली को बार बार हमने देखा, कई माताएं इतनी दिल से मुरली पढ़ती है, पूरी जो सामने लिखी होती है डाइनिंग हॉल में जहां पानी पीते हैं, वो सारी की सारी मुरली याद हो जाती है उनको, इतना अच्छा अच्छा पुरुषार्थ माताएं करती हैं, सवेरे सवेरे आके उठ के शांति स्तंभ पर बैठ जाएंगी। और उनके जीवन में देखा, पढ़े लिखे बहुत हैं भले, लेकिन मुरली याद ही नहीं है जीवन में, तो कौन आगे चले जाएगा, वो माताएं सबसे आगे गेट पर वही दिखेगी फिर, और दिखे भी चाहिए क्योंकि पुरुषार्थ किया है। ऐसा नहीं है कि हम बाद में बाबा को हम बोले कि अब हमने इतना पुरुषार्थ किया और हमको स्टेटस तो नहीं मिलेगा, और फिर बाबा बाद में क्या करेगा, टीवी का शो खोलेगा, क्या दिखाएगा, फिर संडे की मुरली में था ना, आई वेल के लिए अपना रक्त तो नहीं लेते हैं, तो आई वे एक सूक्ष्म स्थूल, पुराने संस्कार या संपत्ति के बारे में बाबा ने कहा होगा, तो फिर टीवी में क्या दिखेगा, सामने क्या दिखेगा, वो टीवी में जो सब कुछ हमने किया हुआ है वो सब दिखेगा, उसमें तो कह नहीं सकते बाबा मेरा चित्र नहीं है, कोई दूसरा ही है, मेरा जुड़वा भाई है, ऐसा तो होगा नहीं, बाबा तो बता देगा तेरे आसपास कौन बैठे थे, देख फिर उसमें क्या दिखेगा, दो लड़ रही हो दुर्गा और संतोषी, आपस में लड़ाई हो रही है, यहां भी हम एक दूसरे से विपरीत हो जाते, क्या है अब देवता घराने की आत्माएं हैं ना, एक दुर्गा घर में रहती है और एक उसका लौकिक भाई वो हनुमान है, दोनों ज्ञान में चलते हैं और दोनों लड़ रहे हैं, दुर्गा और हनुमान की लड़ाई हो रही है, तो कैसे लगेगा, फिर बाबा सीन दिखाएगा टीवी में, देखो ये क्या हो रहा है। तो युद्ध कहां होता है, युद्ध का मैदान तो हमारे अंदर ही, कुरुक्षेत्र तो अंदर में बना हुआ है, अंदर ही हमारी आंतरिक लड़ाई चलती रहती है, हमारे अपने विचार ही टकराते रहते हैं, हमारे स्वयं के संस्कार, स्वयं की विकृतियां हमको तड़फाती रहती हैं, हमारा दुश्मन बाहर नहीं है कोई भी, हम स्वयं ही स्वयं के दुश्मन है ना, अज्ञान काल में भी कहा जाता है ना, आत्मा ही अपना ही मित्र, अपना ही शत्रु है, तो सारा ज्ञान तो अप्लाई भी करना है, तो शत्रु तो हमने खुद ही पाल के रखे हुए हैं, तो सबको उनको बाहर निकालना है। तो ब्राह्मण अर्थात, हाँ जी सीखना, हाँ 8-10 दिन पहले मुरली थी साकार मुरली, ब्राह्मण अर्थात जब तक जीना है तब तक नहीं, ये नहीं था, ये तो था ही था, लेकिन ये जो आपने बोला तब तक सीखना है, सीखने की हमारी मंशा कम नहीं होनी चाहिए, जैसे हमको पता लग, थोड़ा हम ये मन में मैच्योरिटी आती है कि हाँ हमको पता चल गया है, वहीं हमारी स्थिति रुक जाती है, अंत तक सीखते रहना है, और छोटे बच्चे से भी सीखना है। और देखा हमने कई छोटे छोटे बच्चे में इतने मैनर्स होते हैं, इतनी फजीलियत होती है उनमें, इतने अच्छे अच्छे मैनर होते हैं, वो हमारे में बिल्कुल ही नहीं होते, वो और नेचुरल है। कल था ना, कल की मुरली में तुम्हें किस बात में फिक्र नहीं करना है, हाँ, कि कोई हार्ट फेल हो जाए क्या शरीर छोड़ दे तो फिक्र नहीं करना है, क्यों? क्योंकि आगे जाके वो अच्छी सेवा करेगा। तो जो आत्मा हम देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे दिखते हैं, कौन है? ये वही तो होंगे जो इतने मेहनत से उनको बात मत पूछो। आजकल यूट्यूब में इतनी छोटे छोटे बच्चे इतनी जबरदस्त मुरलियां सुनाते हैं कि बड़ों को भी नहीं उतरी आती, हमने देखा। हमको हमारा भी उतना चिंतन नहीं चलता है, और इतना अथॉरिटी से सुनाते हैं वो, तो वो कौन सी सोल है? तो इस यज्ञ से जो भी जाती है वही तो सोल है ना। तो हमको हर एक से सीखना है, ब्राह्मण अर्थात सदा सीखने वाले। और नेक्स्ट, आज की मूल्य से ब्राह्मण अर्थात सदा साक्षी की सीट पर सेट रहने वाले। उस पर क्या होगा? माया के खेल क्या लगेंगे? जैसे क्या लगेंगे? मनोरंजन। तो साक्षी होके देखना है। अब बाजार में मान लो कोई व्यक्ति जा रहा है, उसको अपनी मंजिल पर जाना है, और जबरदस्ती मुंह को उसको पकड़ के बिठा दें तो क्या होगा? फिर वो हमारे से लड़ाई करेगा ना, है ना? ऐसे ही साक्षी अर्थात जो भी हमारे मन में अगर कोई ऐसे वैसे विचार आते हैं, उनको पकड़ना नहीं है, जाने देना उनको, है ना? अगर कोई भी नेगेटिव विचार आता तो क्या होता है? उसको पकड़ के बैठते हैं, फिर उसका चिंतन करते रहते हैं, और उसको पकड़ के बिठा रहे तो दुखी करेगा ना हमको। तो साक्षी अवस्था अर्थात अपने उन विचारों को भी साक्षी होकर देखना जो हमको तंग करते हैं, उनके बारे में ज्यादा चिंतन नहीं करता, उसको जाने दो। किसी को जबरदस्ती पकड़ेंगे तो क्या करेगा? वो तो वहां अड्डा जमा लेगा ना, फिर वहीं अपना अधिकार जमा लेगा। इसलिए साक्षी स्थिति की, इसलिए बाबा क्यों साक्षी रहते हैं? इतना बड़ा ब्राह्मण परिवार, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, लेकिन बाबा को कोई टेंशन है? बाबा की स्थिति पर कोई फर्क पड़ता है? वो तो हमेशा ऊंची सीट पर सेट है, क्योंकि पता है कि फ्यूचर में तो यही देवता बनने वाले। लेकिन हमको अपने ऊपर विश्वास कम हो जाता है, इसलिए हम उन विचारों को पकड़ के बैठ जाते हैं। इतना ऊंचा स्टेटस है और हम उस विचार को पकड़ते 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 जैसे गिर जाते हैं। इस ब्राह्मण जीवन में जैसे बाम मार की अवस्था आ जाती है। तो उन विचारों से हमको घबराना नहीं है, कैसे भी विचार हैं नहीं उनको छोड़ दो। इसलिए बाबा ने हमको फुल स्टॉप लगाने का मेथड क्यों दिया? फिर इसलिए दिया है, इसलिए ब्रह्मा भाई क्या कहते हैं, सबसे आगे तो ये इंजन है, इसको तूफान लगते हैं। इतने बड़े परिवार की जिम्मेवारी है। तो जब बाबा हमारा पिता ही हमको कह रहा है कि तूफान आएंगे, बीमारी आएगी, तो टेंशन नहीं लेनी, तो हम क्यों टेंशन लें? फिर आ गया तो आ गया, क्या करें अभी? तो उसको छोड़ देने का। इसलिए शाम को फुल स्टॉप लगाना कि आज नेगेटिव जा रहा है, अच्छा हुआ आगे खत्म हो गया, इनको आने तो है ही है वो। लेकिन हमको ऐसा नहीं कि रोज रोज वो ही सोचते रहना, फिर उन पर थोड़ा काम करना पड़ेगा कि आ कहां से रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्यों मैं इनको आने दे रहा हूं, क्यों इनको रोकने की ताकत नहीं है, क्यों आत्मशक्तिशाली नहीं बनी है? तो उस पर काम करना है हमको। तो ब्राह्मण अर्थात सदा साक्षी स्थिति की सीट पर सेट रहने वाले हमेशा। और नेक्स्ट, ब्राह्मण अर्थात हाँ संडे की, पिछले संडे की मुरली में था, ब्राह्मण अर्थात नवीनता के --, मुरली की लास्ट लाइन थी वो, लाइट हाउस माइट हाउस। हर बात में नवीनता चाहिए, योग में भी नवीनता, ज्ञान में भी नवीनता है। तो अभी एक छोटा सा प्रयोग करेंगे, योग में नवीनता करते हैं, ठीक है? तो सभी अलर्ट होकर बैठेंगे। वैसे तो योग के नए नए बहुत सारे प्रयोग किए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ी जगह कम है, तो सभी अलर्ट होकर बैठेंगे और अपना हाथ पहले आप संकल्प कीजिए कि हम सर्वशक्तिवान बाप दादा की छत्रछाया में बैठे हैं और बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। सभी अपना राइट हैंड अपने सिर पर रखेंगे। रख दिया सभी ने? देखो कोई रह तो नहीं गया आसपास, देख लो। तो रख दिया, तो सोचिए, महसूस कीजिए, ये बाप दादा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है और बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं। बच्चे सदा बाणप्रस्थ अवस्था में स्थित रहो, स्थित भव, सदा बाणप्रस्थी भव, सदा धैर्यवान भव, सदा रुद्र ज्ञान यज्ञ के रक्षक भव। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में अपनी कमी कमजोरियों की आहुति देने वाले सच्चे ब्राह्मण भव, होशियार व्यापारी भव, सदा साक्षी स्थिति की सीट पर सेट रहने वाले सर्व शक्तियों से संपन्न आत्मा भव। निरंतर परमात्म छत्रछाया में पलने वाली विशेष आत्मा भव। सदा जागती ज्योत भव। अव्यक्त फरिश्ता भव। लाइट हाउस माइट हाउस भव। परम पवित्र आत्मा भव। ब्रह्मांड में सैर करने वाली परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा भव। अव्यक्त फरिश्ता बनकर विश्व की प्रतिमा करने वाले विश्व सेवादारी भव। खुशियों से संपन्न संतुष्ट मणि भव। निरंतर वरदानों से पलने वाली वरदानी मूर्त आत्मा भव। महसूस कीजिए जैसे बाप दादा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है और बाबा के हाथ से सर्व शक्तियों का करंट मुझ आत्मा में भरता जा रहा है, जैसे मेरा पूरा शरीर भी लाइट का हो गया है, सारी चमड़ी लाइट की हो गई है, सारे शरीर में परमात्म शक्तियां करंट की तरह दौड़ रही हैं, जैसे शरीर में खून दौड़ रहा है ऐसे नस नस में परमात्म शक्तियां दौड़ रही हैं, पूरा शरीर लाइट का है। बहुत तेजी से परमात्म शक्तियों का करंट शरीर में दौड़ रहा है, नस नस में परमात्म शक्ति बढ़ती जा रही है, जैसे मैं आत्मा परमात्म शक्तियों का लाइट हाउस बन गई हूं। मेरी आंखों में परमात्म शक्तियां दौड़ रही हैं, जैसे बाबा का वरदानी हाथ सर्व शक्तियों का स्तंभ है। लाइट ही लाइट सारे शरीर में घूम रही है, मेरे आसपास लाइट ही लाइट है, सारे घर में लाइट ही लाइट है, सारे शहर में परमात्म शक्तियों की लाइट ही लाइट है। सारे संसार में जैसे परमात्म शक्तियों की लाइट से पूरा संसार जगमगा रहा है, पवित्रता के वाइब्रेशन चारों ओर प्रवाहित हो रहे हैं, वायु में हवा में पवित्रता के वाइब्रेशन समाये हुए हैं, आकाश में पवित्रता के वाइब्रेशन हैं, धरती के कण कण में पवित्रता के वाइब्रेशन हैं, जल में जैसे पवित्रता भरी हुई है, पवित्रता की तरंगे जल में प्रवाहित हो रही है, चारों ओर परमात्म शक्तियां ही शक्तियां, परमात्म पवित्रता ही पवित्रता। जैसे बाबा का वरदानी हाथ 24 घंटे मेरे सिर पर है, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते जैसे बाबा मेरे साथ कंबाइंड है। ओम शांति।